आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ूंगी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। यह क्लास 10th के साइंस का 12th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। लास्ट क्लास के अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया है। हमने देखा कि अगर किसी सर्किट के अंदर अगर हम वोल्टेज को सेम रखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखते हैं, करंट को चेंज करना चाहते हैं, तो इसको चेंज करने का, करंट को चेंज करने का एक तरीका है हमारे पास। अगर हम उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस में वेरिएशन ला दें तो हम करंट को चेंज कर सकते हैं बगैर पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए। तो करंट जो है वो इनवर्सली रिलेशन होता है रेजिस्टेंस के। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो उसका करंट जो है सर्किट का वो कम हो जाएगा, और अगर आप रेजिस्टेंस को घटाएंगे तो सर्किट के अंदर करंट बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो डिवाइस यूज कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के सोर्स के तौर पर, तो वो रियोस्टैट होता है। रियोस्टैट का वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएशन ला सकते हैं हम रियोस्टैट की मदद से सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस में वेरिएशन ला सकते हैं। उसके बाद हमने एक्टिविटी 12.2 से समझा था कि किस तरीके से अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन ना लाएं और हम करंट में वेरिएशन लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस के अलग अलग सोर्सेज यूज करने पड़ते हैं, निक्रोम वायर, फिर दूसरी बार हमने 10 वाट का बल्ब यूज किया, फिर टॉर्च वाला बल्ब यूज किया, जिनके सभी के अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। तो हमने यहाँ पर अलग अलग रेजिस्टेंस वाला डिवाइस यूज करके करंट में वेरिएशन लाया था जो कि सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा होता क्यों है कि अलग अलग डिवाइसेस का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो देखो, कंडक्टर्स जो हैं उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो को उतना इजी नहीं होने देता है कंडक्टर के एटम्स। कंडक्टर जिस भी मटेरियल का बना है वो किसी न किसी मेटल का मटेरियल है, तो वो मेटल जो है उसके एटम्स जो है वो भी मेटेलिक है। मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनके एटम्स, तो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, जो फ्लो का मूवमेंट है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो दिखता है मेटल्स के अंदर भी। और रेजिस्टेंस होता यही है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जो उनका फ्लो का जो मूवमेंट है उसमें उनके पाथ में जो भी डिफिकल्टी आ रही है वो रेजिस्टेंस है। तो उनके पाथ में जो भी डिफिकल्टी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के पाथ में जो डिफिकल्टी आ रही है, वही उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया। उसके बाद हमने ये भी आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कम है तो वो गुड कंडक्टर है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हायर होती है। लेकिन यहाँ पर रीजन ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के साथ में कोई अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है इंसुलेटर्स के अंदर वही कम होती है, तो चार्ज फ्लो नहीं हो पाता। ज्यादा चार्जेस नहीं है तो फ्लो ही नहीं होगा उनका ज्यादा, तो ज्यादा फ्लो ना होने की वजह से ही इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हमने बात करना शुरू किया था कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमने देखा था एक्टिविटी 12.3 करके कि एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है, जो डिवाइस यूज किया है उसकी वायर की लेंथ कितनी है इस बात पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, साथ में इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, साथ में इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में बात की हुई है, अब हम आज की क्लास में बात करेंगे कि किस टाइप का डिपेंडेंस होता है रेजिस्टेंस का ऑन लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड मटेरियल ऑफ वायर। किस टाइप का डिपेंडेंस होता है, डायरेक्ट डिपेंडेंस होता है कि इनवर्स डिपेंडेंस होता है, तो ये देखना है हमको। तो हमने जो एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 12.3, उसमें हमने देखा था कि जब हम लोग लेंथ बढ़ा रहे थे वायर की, तो वायर की लेंथ बढ़ाने पर करंट की वैल्यू चेंज होती है। किस तरीके से चेंज होती है हमने नोटिस किया था जब एक्टिविटी हमने की थी 12.3, एक्टिविटी 12.3, तो इसमें हमने देखा था कि वायर की लंबाई बढ़ाने पर, वायर की लंबाई दुगनी कर देने पर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी। ना सिर्फ डिक्रीज हुई थी, आधी हो गई थी। पहले जितनी करंट दिख रही थी उसकी आधी हो गई थी। तो हमें कुछ समझ में आना चाहिए जब हम ये देखते हैं कि वायर की लेंथ बढ़ाने पर अमीटर जो है वो अलग वेरिएशन शो करता है, उसकी करंट की कुछ वेरिएशन होती है, और वो भी ऐसे होती है कि उसकी वैल्यू घट जाती है। यानी कि जरूर रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस जो होगा वो बढ़ा हुआ होगा सर्किट के अंदर, तभी तो हमारे करंट की वैल्यू घट गई, क्योंकि हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वायर की लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस बढ़ी होगी, तभी करंट कम हुई है जो हमारे सर्किट में फ्लो कर रही है, और वो भी कैसे कम हुई है, वो हाफ हो गई है। इसका मतलब जरूर रेजिस्टेंस डबल हुआ होगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर हमने वायर की लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस डबल हुआ, तो किस तरीके का रिलेशन हुआ डायरेक्ट, जो रेजिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ दी वायर के, जो आपने डिवाइस यूज किया है उसके अंदर जो वायर यूज हुई है उस वायर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेजिस्टेंस उस वायर के लेंथ पर। तो अगर आप वायर जो डिवाइस के अंदर यूज की गई है उसकी लंबाई बढ़ा देते हैं वायर की, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपने बढ़ाया है उतना ही ज्यादा वो बढ़ेगा। अगर आपने डबल किया है वायर की लेंथ को तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया और आपने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा हुआ है तो करंट हाफ हो जाता है। ये तो आपको पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखने पर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर करंट की वैल्यू घट जाती है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही कम हो जाएगा करंट का वैल्यू। तो इसी से हम लोगों को यहाँ पर समझ आ गया कि रेजिस्टेंस जो है वो वायर जो डिवाइस के अंदर यूज की गई है उसकी लंबाई पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा आप लेंथ बढ़ाएंगे ऑफ दी वायर जो डिवाइस के अंदर यूज की गई है उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। अब अगली बारी आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, जो मोटाई है जो थिकनेस है वायर की उस पर किस तरीके से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये चेक करने के लिए हम फिर से अमीटर की रीडिंग को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पर क्या किया था, अगली सिचुएशन के अंदर आपने जो वायर ली थी उसी लेंथ सेम ली थी पहले वाले निक्रोम वायर की जितनी ही आपने लेंथ ली थी, लेकिन आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल कर दिया था। जो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया था और इस वक्त आपने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा हुआ है, वायर की लेंथ कांस्टेंट रखी हुई है, सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया, तो आपने ये देखा था कि अमीटर जो रीडिंग शो कर रहा था वो जब आपने सबसे पहली वाली जो निक्रोम वायर यूज की थी उसके रिस्पेक्ट में जो अमीटर रीडिंग शो कर रहा था उसकी दुगनी रीडिंग अब शो कर रहा है। थर्ड सिचुएशन में पहली वाली सिचुएशन के मुकाबले थर्ड सिचुएशन में अमीटर जो है वो करंट की रीडिंग दुगनी शो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया वायर का तो उससे करंट भी बढ़ गया, और बढ़ा भी कैसे, जितना डबल आपने अगर किया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमारे करंट की वैल्यू भी डबल हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जरूर रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से प्रोपोर्शनल होना चाहिए, रेजिस्टेंस घटना चाहिए तभी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है। इसका मतलब जरूर रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, और वो भी हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल करने पर करंट की वैल्यू डबल हो गई। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जरूर आधी हो गई होगी। इसका मतलब है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, अब मटेरियल ऑफ दी वायर देखना चाहते हैं हम। ये देखना चाहते हैं मटेरियल ऑफ दी वायर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि उनके अंदर करंट के फ्लो को रोकने की क्षमता अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल ऑफ दी वायर पर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बन करके आएगा वो कैसे आएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल बाय ए तो आपको समझ आता है, L जो है वो लेंथ है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, स्मॉल L से रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो जो है ये आपका कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी हो सकता है, और ये मटेरियल ऑफ दी वायर बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है मटेरियल ऑफ दी वायर को भी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल ऑफ दी वायर पर भी डिपेंड करता है, साथ में ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है। तो आपका फाइनली फॉर्मूला जो निकल करके आएगा वो कैसे आएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो एक ग्रीक सिंबल है जिसको आप लोग देख सकते हो किस तरीके से इसे बनाते हैं, पेज नंबर 207 पर आप देख सकते हैं। पेज नंबर 207 पर आप देखिए आप लोगों को इक्वेशन दी गई है 12.10, इसमें आप लोगों को लिखा है आर इज इक्वल टू रो एल बाय, उल्टे 9 के जैसा जो ये दिख रहा है सिंबल, ये ग्रीक सिंबल है, इसे रो कहते हैं, ग्रीक में इसे रो कहते हैं, और ये जो है यही कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आपने सबसे पहले जो लिखा है इक्वेशन उसमें आपने इक्वेशन 12.9 में आपने क्या लिखा है, 12.8 में आपने लिखा है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और 12.9 में आपने लिखा है इक्वेशन 12.9 में पेज नंबर 206 207 पर आप लोग आ जाओ और यहाँ पर आप देखो इक्वेशन 12.8 में आपने लिखा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और 12.9 इक्वेशन में आपने लिखा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों बातों को कंबाइन करने पर हमें मिलता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटानी पड़ेगी, इक्वालिटी लानी पड़ेगी, तो उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते ही हम लोग एक कांस्टेंट ला देते हैं जिसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल रख के तो आप कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इक्वालिटी का साइन रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना होता है ताकि आप इक्वालिटी ला सकें। तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो ये जो रो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है, साथ में ये जो रो है इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, ये मटेरियल ऑफ जो आपने वायर यूज किया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल करके आया R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, इसका भी एक ऐसा ही यूनिट होता है ओम मीटर। ओम आपको पता है, ओम जो होता है ये हमारे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है और ओम मीटर जो होता है रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है। मेटल्स की और अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, किस रेंज में होती है, 10^-8 से 10^-6 के रेंज में होती है ओम मीटर, ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं। तो 10^-8 से 10^-6 के रेंज में मेटल्स और अलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है। इंसुलेटर्स की बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, 10^12 से 10^17 ओम मीटर की रेंज में होती है। इंसुलेटर जैसे कि रबर या फिर ग्लास, प्लास्टिक, ये सारी जो मटेरियल्स हैं इनकी बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, 10^12 टू 10^17 ओम मीटर, इतने हाई रेंज में होती है। लेकिन मेटल्स की और अलॉयज की बहुत कम होती है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस दोनों ही जो ये बातें हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर बढ़ाने पर इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। वेरिएशन भी कैसे आता है कि अगर आप कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं जो कि कंडक्टर है या फिर अलॉय है, तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर आप कोई सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है वो घट जाती है। तो इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोगों को पेज नंबर 207 पर एक टेबल दिया गया है, टेबल 12.2। इसमें आप लोगों को अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दिए गए हैं, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी देख सकते हो, अलॉयज की रेजिस्टिविटी देख सकते हो और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंडक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो 10^-8 से 10^-6 के ऑर्डर में है, लेकिन अलॉयज जो है यहाँ पर वो सारे के सारे 10^-6 के ऑर्डर के आपको दिए गए हैं। इस पेज पे आपको जो टेबल 12.2 है पेज नंबर 207 पर, इसमें आपको जो अलॉयज दिए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जिनका रेजिस्टिविटी का ऑर्डर 10^-6 के ऑर्डर में है, लेकिन कंडक्टर्स जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी 10^-8 से 10^-6 के बीच बीच में कोई सी भी हो सकती है। तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी जो है ये आप लोगों को क्या दिख रहा है कि इसकी हायर है। जैसे ही हम 10^-8 और 10^-6 में हायर कौन सा होता है, 10^-6 होता है, तो अलॉयज की यहाँ पर रेजिस्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर एक और बात है कि रेजिस्टिविटी जिन मटेरियल्स की ज्यादा होती है वो जल्दी हीटअप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं वो, क्योंकि रेजिस्टिविटी मान लो अगर वो मटेरियल ऐसा है जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, करंट वो खुद में पास ही नहीं होने दे रहा है, ज्यादा करंट जो है वो उसको पास नहीं करने दे रहा है, लेकिन करंट फिर भी आ तो रहा है उसमें, अब उसके अंदर से फ्लो नहीं कर रहा है, तो वो करंट जो है उसमें कुछ एनर्जी रहती है, जो भी करंट है वो किसी एनर्जी से कन्वर्ट होकर करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर उसके पाथ को रोका जाए तो वो हीट अप करने लगती है मटेरियल को। तो ऐसे मटेरियल जिनका हीटिंग इफेक्ट वाला मटेरियल होता है, जैसे कि आयरन हो गया या फिर टोस्टर हो गया या फिर बॉयलर हो गया, तो इनमें जो मटेरियल यूज किए जाते हैं टोस्टर में, ब्रेड आपका ब्रेड जो है उसको टोस्ट करने के लिए जो टोस्टर होता है, तो टोस्टर में या फिर आयरन में प्रेस करने के लिए, कपड़ों को प्रेस करने के लिए जो आयरन यूज करते हैं उसका मटेरियल यूज करने के लिए, तो इनमें जो वायर्स लगाई जाती हैं इनमें हाई रेजिस्टिविटी की वायर्स लगाई जाती हैं ताकि वो हीटिंग इफेक्ट दिखाएं, गर्म हो जाए, ताकि हम जो काम करना चाहते हैं वो हमारा काम हो पाए, क्योंकि हम कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन को गर्म करना चाहते हैं, तो इसलिए इनमें हाई रेजिस्टेंस वाली, हाई रेजिस्टिविटी वाली वायर्स यूज की जाती है। ये अलॉयज जो है इनकी रेजिस्टिविटी हायर है, उतनी ही ज्यादा ये गर्म होगी, जल्दी गर्म हो जाएंगी, लेकिन जलेंगी नहीं, जलेंगी इसलिए नहीं क्योंकि इनकी खासियत होती है कि जलती नहीं है जल्दी, एक वैल्यू होती है अलॉयज की, जिसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये हाई होती है। इसका मतलब है कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी से ये बर्न नहीं होंगे, ये जलेंगे नहीं। तो इसीलिए अलॉयज यूज किए जाते हैं टोस्टर बनाने के लिए, टोस्टर की जो वायर्स है उसको बनाने के लिए अलॉयज यूज किए जाते हैं, या फिर हमारा जो आयरन है उसको उसमें जो वायर्स यूज करनी है उसके लिए भी हम लोग यही अलॉयज की वायर्स ही यूज करते हैं, क्योंकि इनकी एक तो रेजिस्टिविटी हाई होती है, दूसरा इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हाई होता है, जिसकी वजह से ये बर्न भी नहीं होते हैं जल्दी से, इतना गर्म होने के बावजूद भी ये बर्न नहीं होते हैं। साथ में बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट बनाने के लिए हम लोग टंगस्टन यूज करते हैं। ये बातें आपको पता भी होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं आपसे कि किस मटेरियल का यूज किया जाता है टोस्टर बनाने के लिए, या फिर क्यों यूज किया जाता है। तो टंगस्टन जो है उसका कहाँ यूज किया जाता है, बल्ब में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो ये बातें आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रहनी है। तो टंगस्टन का यूज करते हैं बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए। साथ ही में कॉपर और अल्युमिनियम का जनरली यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए, जो लंबी लंबी लाइंस बिछाई जाती हैं बिजली की, तो उन लाइंस को बिछाने के लिए घरों में भी कॉपर के वायर्स यूज किए जाते हैं जनरली, तो इनका यूज किया जाता है वायर्स बनाने के लिए। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को ये जो टेबल 12.2 दिया है, इसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दी है अलग अलग मटेरियल्स की, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ बातें याद करने की जरूरत है, जैसे कि अलॉयज का यूज किया जाता है टोस्टर बनाने के लिए, आयरन बनाने के लिए टंगस्टन का यूज करते हैं बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए, अल्युमिनियम और कॉपर का यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की वायर्स बनाने के लिए। तो बस थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद रखनी है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता होनी चाहिए, ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब तक जो हमने बातें पढ़ ली हैं, तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए हैं, जैसे कि ओम्स लॉ हो गया है हमारे पास, वी इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये सारे फॉर्मूलाज पे बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने हैं, जो कि पेज नंबर 208 पर है। सबसे पहला है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जांपल 12.3। इसमें आप देख सकते हैं आपको दो पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में पूछा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। एक और बात, एक और जानकारी, आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट का आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके घरों में सप्लाई जो आती है पोटेंशियल डिफरेंस की वो कितने की आती है, तो आप कहेंगे 220 वोल्ट। तो उसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन पूछा है, आपको पूछा है कि अगर आपके घर के अंदर 220 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है और बल्ब जो आप यूज कर रहे हैं वो 1200 ओम का है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है बल्ब के अंदर। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आप लोगों को वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, करंट पूछा है, तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे, V की जगह लिखेंगे 220 वोल्ट और आप रेजिस्टेंस की जगह लिखेंगे 1200 ओम, I की वैल्यू आपको पता लग जाएगी V बाय R, तो V बाय R आपका I का वैल्यू हो जाएगा, V की जगह आप 220 लिख देंगे और R की जगह 1200। तो आपको सॉल्व आप खुद करेंगे, आप मैच कर लेंगे, आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है पेज नंबर 208 पर, 0.18 एम्पियर की वैल्यू आपको मिलेगी। उसके बाद इसी क्वेश्चन का एग्जांपल 12.3 का ही नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। अगर आप एक हीटर कॉइल यूज कर रहे हैं, आपके घरों में हीटर्स होते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो हीटर कॉइल अगर आप यूज कर रहे हैं और उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस दी गई है 220 वोल्ट की, तो ऐसे में पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, V बाय R इज इक्वल टू I, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले में से आप लिखेंगे V बाय R इज इक्वल टू I, V की जगह लिख देंगे 220 और आप R की जगह लिख देंगे 100, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 2.2 एम्पियर का करंट हीटर कॉइल ड्रॉ कर रहा है। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग रेजिस्टेंस वाले अगर हम डिवाइसेस यूज करते हैं तो उनके थ्रू करंट अलग अलग फ्लो करता है, भले ही हम सेम सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहे हो, लेकिन उन अलग अलग अगर हमने डिवाइस यूज किए जिनका अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो उनके थ्रू करंट फ्लो करने की भी अलग अलग वैल्यू आएगी। और एक और बात आपको यहाँ पर पता चल रही है वो ये है कि अगर डिवाइसेस अलग अलग हैं, उनके थ्रू अलग अलग करंट फ्लो कर रही है, लेकिन उनका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, इसका मतलब है वो पैरेलल कनेक्शन में लगे हैं। आपके घरों में जो आप इक्विपमेंट्स लगाते हैं, फैन लगाया या बल्ब लगाया, कूलर लगाया, एसी लगाया, हीटर लगाया, कुछ भी लगाया, तो वो सभी पैरेलल कनेक्शन में लगाए जाते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन से फायदा बहुत होता है। ये होता है कि अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है, फ्यूज उसका उड़ जाता है, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, बाकी के डिवाइसेस में आराम से फ्लो करेगा। तो इसीलिए पैरेलल कनेक्शन की जाती है आपके घरों के अंदर। तो पैरेलल कनेक्शन से क्या होता है कि डिवाइसेस जितने भी लगे हैं उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट की अलग अलग वैल्यू जाएगी, जितनी उनको रिक्वायर्ड होगी उतनी ही जाएगी। तो इससे क्या होता है कि डिवाइसेस जो है वो फ्यूज भी नहीं होते, क्योंकि मान लो कि अगर अलग वैल्यू है, अलग अलग डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस को कम करंट चाहिए, दूसरे को ज्यादा करंट चाहिए, तो अगर वो सीरीज में लगे होंगे तो सबको कांस्टेंट करंट मिलता है, सेम करंट मिलता है। सीरीज कनेक्शन में यही नुकसान है कि सभी जितने भी डिवाइसेस यूज किए गए हैं उनको सेम ही वैल्यू की करंट मिलेगी, उनको कितना चाहिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि डिवाइसेस जो यूज किए हैं उनको करंट उतना दिया जाता है जितना उनको चाहिए, उतना वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सभी के सभी डिवाइसेस का सेम होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 12.4, ये भी पेज नंबर 208 पर ही है। इसमें बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हाट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो आपको जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR से दो बार यूज करना है। एक बार तो आपको बताया गया है कि जो आपका डिवाइस है वो एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसके अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं 60 वोल्ट का, और ये उस वक्त जब आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट का दे रहे हैं तो उस वक्त ये 4 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करता है। तो इससे आपको इसका रेजिस्टेंस पता लगा करके रख लेना है। तो आपके पास फॉर्मूला है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, तो इसमें आप V इज इक्वल टू IR अप्लाई करेंगे तो V बाय I आप लिखेंगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो V आपको दिया है 60 बाय 4 आप करेंगे, V बाय I करेंगे तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसका रेजिस्टेंस पता लग जाएगा। तो आप 60 बाय 4 करिए तो 60 बाय 4 करने से आपको वैल्यू मिलती है 15 ओम। तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस पता लग गया 15 ओम। उसके बाद आपको जब हीटर का रेजिस्टेंस पता लग गया तो अब आपको बोला गया कि अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर देना है जिससे कि करंट जो नया चेंज होकर के मिलेगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पर नया पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बताया गया है 120 वोल्ट, करंट कितना फ्लो कर रहा है हीटर में ये आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस जो चेंज होता नहीं है क्योंकि एक बार मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज सिर्फ तभी होगी अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग फिर से करें। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदला जा रहा है तो करंट भी बदलेगा। तो यहाँ पर आप दोबारा से फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू IR, V की जगह इस बार डालेंगे 120 वोल्ट, I आपको पता लगाना है, R आपको पता है 15, तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू V बाय R, V की वैल्यू है 120, R की वैल्यू है 15, तो 120 बाय 15 करेंगे तो 8 एम्पियर वैल्यू आ जाएगी करंट की जो नेक्स्ट अगले सिचुएशन में फ्लो कर रहा है। 120 वोल्ट जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं इलेक्ट्रिक हीटर को तो उस वक्त जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है वो है 8 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करें, और पहले कोशिश करिए कि आप बगैर देखे, बगैर सॉल्यूशन देखे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपको, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाए तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये इजी वाले क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी ही है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो एग्जांपल 12.5 है, पेज नंबर 208 पर ही है ये भी। इसमें आपसे बोला है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखते हैं इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, मतलब है मिलीमीटर, तो 0.3 मिलीमीटर का डायामीटर है। What will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 12.2 predict the material of the wire. तो यहाँ पर भी पहले solution नहीं देखना है, पहले आप लोगों को solve करने की कोशिश करनी है। आप लोगों के पास formula होता है R is equal to rho L by A। आपको resistance की value given है, आपको length की value given है, area of cross section आप निकाल लेंगे, आपको resistivity निकालनी है। Area of cross section आप कैसे लिखेंगे? Area of cross section basically area ही होता है। हम ऐसा assume करके चलते हैं कि जो वायर है उसकी जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं वो हम, आप सिलेंडर कैसा होता है, एक तो कर्व्ड सरफेस होता है और दो सर्कल्स होते हैं, दो एंड पे दो सर्कल्स जैसा होता है, तो जो सर्कल्स हैं उनका हम एरिया लेते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट होता है, 3.14 वैल्यू होती है। आर जो है वो रेडियस है। अब रेडियस आपको गिवन नहीं है, आपको डायमीटर गिवन है। तो रेडियस आप निकाल लेंगे, डी बाय टू डायमीटर डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, तो 0.3 आपको डायमीटर की वैल्यू दी है, 0.3 mm। तो आप 0.3 mm डिवाइडेड बाय टू करेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर भी कर देंगे, क्योंकि आपको तो आर स्क्वायर चाहिए। तो आप लिखेंगे 0.3 mm बाय टू होल स्क्वायर इंटू पाई, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो वैल्यू मिलेगा वो सॉल्व करने पर आप लोगों को मिलेगा 7.065 × 10⁻⁸। आपको क्या करना है, आपको पाई आर स्क्वायर लिखना है, आर की जगह आपको डी बाय टू लिखना है, फिर आपको लिखना है पाई इंटू डी बाय टू होल स्क्वायर, डी बाय टू पावर में टू होल स्क्वायर, इस तरीके से आपको लिखना है। और d की जगह आप लोगों को 0.3 mm लिखना है। फिर इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7.065 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो SI यूनिट्स में हमने निकाला है, तो मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा 7.065 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा आपको। अब आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है 1 मीटर, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 26 ओम। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब आप इसको जो है थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंजमेंट के बाद में आप लिखेंगे रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, आर इंटू ए, आर इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल। तो अब आप क्या करिए, 26 × 7.065 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 1 मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.8369 × 10⁻⁶, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू आ रही है वो 10⁻⁶ के ऑर्डर में आ रही है। ये जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है, ये आप अगर टेबल 12.2 में चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू किसके बराबर की है, मैंगनीज के वैल्यू के बराबर की है, 1.84। राउंड ऑफ कर दिया गया है यहाँ पर, 1.8369 को राउंड ऑफ करके 1.84 लिखा गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंगनीज की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है उसी के बराबर की वैल्यू आप लोगों को एग्जाम्पल 12.5 को सॉल्व करने पर आपको मिल रही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप लोगों को डायमीटर गिवन रह सकता है, उससे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या समझ के देना है। आपने बाल्टी देखी भी होगी, बाल्टी कैसी होती है, बाल्टी होती है दो साइड से सर्कुलर फेस होता है, एक तो ओपन होता है और एक क्लोज होता है, जो बेस होती है, जो सतह होती है वो क्लोज होती है, लेकिन होती तो वो भी सर्कुलर शेप की है, बेस जो होती है वो सर्कुलर शेप की होती है और जो ओपन फेस होता है वो भी सर्कुलर शेप का होता है। तो ये जो सर्कुलर फेसेस है ना, ऐसा समझ लो कि बाल्टी के दोनों ही जो फेसेस है वो ओपन है, बेस है वो भी ओपन है और जिस तरफ से आप पानी भरते हैं वो भी ओपन है। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप फ्लो कराएंगे पानी का तो एक एंड से पानी घुसेगा, दूसरे एंड से वो निकल जाएगा। या फिर आप पाइप का एग्जांपल भी ले सकते हैं, जो पाइप्स होते हैं आप लोगों के गार्डन पाइप्स जो होते हैं, तो उस पाइप में भी एक एंड से पानी घुसता है, दूसरे एंड से निकलता है। तो जिस एंड से वो घुस रहा है वो सर्कुलर एंड होता है ना, तो वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम सर्कुलर मान के चलते हैं हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तो वो पूरी एरिया में घुसेगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आउटलाइन पे घुसेगा, पूरी एरिया में घुसता है ना पानी, पाइप जो आप यूज करते हैं, तो एक एंड से घुसता है दूसरे से निकलता है। तो इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा जो वायर है वो भी पाइप के शेप का है, लंबा है और उसमें बिल्कुल पाइप जैसा आपके गार्डन पाइप होता है उसी शेप का है। और जिस तरीके से पाइप के अंदर पानी घुसता है, जो आपका गार्डन पाइप होता है, एक एंड से घुसता है दूसरे एंड से निकलता है, तो वैसे ही हम लोग हमारे वायर्स जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें भी अज्यूम करते हैं कि एक एंड से करंट घुस रहा है और दूसरे एंड से वो बाहर निकल रहा है, और जिस एंड से वो घुस रहा है और जिस एंड से वो बाहर निकल रहा है वो दोनों सर्कुलर शेप के हैं। तो इसीलिए उनका एरिया जब हम लेंगे तो हम सर्कल का एरिया लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब आर हो सकता है आपको डायरेक्टली गिवन हो सकता है आपको डायरेक्टली गिवन ना हो, तो आप लोगों को अगर डायमीटर गिवन होगा तो आप डायमीटर जो है उससे रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, डी बाय टू होता है रेडियस, तो आप लोगों को बेसिकली पाई आर स्क्वायर लेना होता है, तो आर की जगह आप डी बाय टू भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना होता है, अगर आपको गिवन ना हो तो आपको खुद कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये 3 examples तो हमने खुद डिस्कस कर लिए, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बचता है, एग्जाम्पल 12.6। मैं चाहती हूँ कि ये आप लोग खुद करने की कोशिश करें, अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पेज नंबर 209 पर एक एग्जांपल रह जाता है, एग्जांपल 12.6, इसको खुद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे नहीं होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा अभी तो आप नेक्स्ट क्लास में समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये जो 5 क्वेश्चंस है पेज नंबर 209 पर उन्हें भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो इससे बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा वो आपको फिर से समझ में आ जाएगा। और आज आपने जो पढ़ा है उसे आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि आपको इन चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। एक तो आप लोगों को लाइट वाला जो चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, इन दोनों में से तो जरूर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों को। तो इसीलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करके रखनी है पहले से ही, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम्स के अंदर। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछें। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।